कोई लीडर से आए हैं, कोई बहुत बम्बई से, तो कोई राजस्थान रिवाड़ी से, तो कोई चंडीगढ़, कोई दिल्ली और कोई वहाँ अमेरिका से भी आए हैं। अनेक भक्त हैं जो वहाँ से आए हैं और भी शायद यहाँ वहाँ से आए होंगे भक्त। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं पूरे से भी आए हैं भक्त, आशा करते हैं आपकी यात्रा अच्छी रही होगी, आपको कोई कष्ट नहीं हुआ होगा। आप में से जो भक्त अभी अभी आए हैं, शायद आप अपने कमरों में अभी तक गए नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आशा करते हैं कम से कम के साथ तो आपने पा लिया होगा सुबह का। और ये भी आशा करते हैं कि आपने सब दर्शन कर लिया होगा। आप में से ऐसे कोई भक्त हैं जिन्होंने रणछोड़ जी मंदिर में दर्शन नहीं किया होगा, हाथ ऊपर कीजिए। गिने चुने भक्त थोड़े हैं, अधिकतर आप में से सब ने दर्शन कर लिया है। फिर भी शाम को भी हम दर्शन करने जाएंगे। कार्यक्रम क्या होगा शाम का वो आपको बताया जाएगा थोड़ी देर में। तो यहाँ यात्रा में जब हम आए हैं तो हमारा भाव कैसे होना चाहिए, यहाँ के नियम क्या है। बहुत सुंदर एक सूची पर से यहाँ नियमावली यहाँ बताई हुई, ये तो सबको मिला होगा। बहुत अच्छे ढंग से बताया गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। नियम तो बहुत होते हैं और उनका पालन भी करना चाहिए, परंतु नियमों का सार क्या होता है कि भगवान कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम हम बनाए। शास्त्र में बताया गया है स्मर्तम के सतत विष्णु स्मर्तम के अनुजात उचित सर्वे विधि निषेधास्योर एक इसका मतलब है कि वेदों में अनेक शास्त्रों अनेक नियमों का वर्णन पाया जाता है। नियम दो प्रकार के होते हैं, एक है विधि और दूसरा है निषेध। विधियां वो होती हैं जो हमें करना चाहिए, निषेध वो होते हैं वो कार्य जो हमें नहीं करने चाहिए। तो विषय विधि और निषेध ऐसे अनेक हैं शास्त्रों में, परंतु इन सब का सार और इन सब का उद्देश्य है कि हम भगवान श्री कृष्ण को कभी भूले नहीं और श्री कृष्ण का सदैव स्मरण करें। तो जैसे विधियां हैं अर्थात वो कार्य हमें करने चाहिए, तो इनका सार है, सारे विधियों का सार है स्मर्तव्य है सततम विष्णु, कि सदैव श्री कृष्ण का स्मरण हमें करना चाहिए। और जितने भी निषेध हैं जो कार्य हमें नहीं करने चाहिए, जिनका उल्लेख वेदों में है, उनका सार है विस्मर्तव्य न जातुचित, कि कभी भी भगवान श्री कृष्ण को भूलना नहीं। तो विधियों का सार है भगवान का स्मरण करना, निषेधों का सार है भगवान को भूलना नहीं। भगवान को स्मरण करना और भगवान को भूलना नहीं, इन दोनों का अर्थ तो एक ही है, फिर भी विधि और निषेध अलग अलग होने के कारण इनको इनका भेद इस तरह से किया गया है। तो ठीक इसी तरह से यहाँ नियम भी बहुत है और पालन तो अवश्य आप सब करेंगे ही, फिर भी सबसे जो महत्वपूर्ण निर्णय है या महत्वपूर्ण नियम है वो ये है कि हम सदैव श्री कृष्ण का स्मरण करें, श्री कृष्ण का नाम लें और श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहें और कभी श्री कृष्ण को भूले नहीं। एक तो आ रही है तो यात्रा के समय जितने भी नियमों का पालन करेंगे इनका उद्देश्य ये है। साथ साथ में केवल हमारे कृष्ण स्मरण के लिए अनुकूल क्या है, केवल इतना नहीं देखना है, केवल हमारे कृष्ण स्मरण के लिए प्रतिकूल क्या है, उनको कैसे टालना चाहिए, केवल इतना देखना काफी नहीं है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए, खास करके जब हम यात्रा में आते हैं, कि न केवल हमारे कृष्ण स्मरण में अनुकूल क्या होगा, परंतु अन्यों के कृष्ण स्मरण के लिए अनुकूल क्या होगा। न केवल हमारे कृष्ण स्मरण के लिए प्रतिकूल क्या होगा, न केवल ये सोचना है, परंतु अन्यों के कृष्ण स्मरण के प्रतिकूल क्या होगा वो भी ध्यान रखना चाहिए। तो नियमों का पालन करने से हम ये देखते हैं कि न केवल हमारा कृष्ण स्मरण बढ़े, परंतु साथ साथ अन्यों का भी, जो हमारे साथ अन्य भक्त आए हैं इस यात्रा में, उनका कृष्ण स्मरण भी बढ़े। नियम पालन ठीक से नहीं करेंगे तो क्या होता है, फिर समय में फेरबदल हो जाता है, फिर जो कार्यक्रम सूची होती कार्यक्रम जैसे निर्धारित होता है वैसे नहीं कर पाते हैं, इसलिए नियमों का महत्व है। दूसरी बात यह है कि जो यात्रा होती है तीर्थ यात्रा, धाम की यात्रा, ये तपस्या के लिए होती है और भगवत चेतना की वृद्धि के लिए होती है। भगवत प्रेम बढ़ाना है तो शरीर को कष्ट थोड़ा तो देना ही होगा। जगह जगह अब हम घूमने वाले हैं, भ्रमण तो शुरू कर ही दिया है, अपने अपने स्थानों से आप दूर दूर यहाँ पर आए हो तो भ्रमण तो होगा और भ्रमण के समय थोड़ा कष्ट भी होगा। अलग अलग स्थानों में रहते हैं तो वहाँ भी थोड़ा कष्ट हो सकता है। अपने घर के आराम में से हम आदि हैं और अपने घर को छोड़कर अलग अलग जगह जा रहे हैं, छोटे छोटे जगह कमरों में अन्यों के साथ रह रहे हैं, तो ये भी एक तपस्या है। और कलयुग की सबसे बड़ी तपस्या तो ये है कि सबके साथ कृष्ण भक्ति में हम बड़े प्रेम से, सहयोग से, सेवा भाव में हम रहें। हमारे लिए दूसरे कोई कष्ट हो तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान न देकर हम इस बात पर ध्यान दें कि अन्यों को कष्ट नहीं होना चाहिए। सबकी सुविधा का ध्यान रखेंगे तो यात्रा में कृष्ण भावना का विकास सबका अच्छी तरह से हो पाएगा। वैसे यात्रा में जाना, तीर्थ यात्रा में जाना भक्तों के संग में ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का। पाद सेवनम के अंतर्गत ये गिना जाता है। आप तो जानते हैं कि प्रहलाद महाराज ने नौ विधियों का उल्लेख किया है जबकि उन्होंने भक्ति की परिभाषा की। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, महाराज कहते हैं कि ये नौ अंग हैं भगवान के भक्ति के, और जो इन नौ अंगों का अनुशीलन करता है वो सबसे विद्वान व्यक्ति है, ऐसे प्रहलाद महाराज का मत है। और इन नौ विधियों का प्रारंभ होता है श्रवण से, उसके बाद आता है कीर्तन, उसके बाद आता है स्मरण, और उसके बाद आता है पाद सेवनम। तो पाद सेवनम में हम भगवान के चरण कमलों की सेवा करते हैं, पाद सेवनम में हम हमारे पैरों का इस्तेमाल करते हैं भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान के मंदिर में जाने के लिए, भगवान के धाम धाम की परिक्रमा करने के लिए ये भी पाद सेवनम है। और भगवान से संबंधित जो भी हैं चीज़ें तदीय उनकी सेवा करना, तदीय सेवा, ये भी पाद सेवनम के अंतर्गत माना जाता है। तो भगवान के धाम में जाना, मंदिरों का दर्शन करना, परिक्रमा करना, ये पाद सेवनम के अंतर्गत तो आता है ही, साथ साथ हम केवल पर्यटक की तरह नहीं आते हैं। जो पर्यटक होते हैं वो भी बहुत घूमते फिरते हैं, इधर उधर जाते हैं, परंतु उनकी भावना वैसी नहीं होती है। और जो भक्त अकेले भी आते हैं तो हो सकता है उनको वो रस न मिले जो कि भक्तों के संग में मिल सकता है, क्योंकि भक्तों के संग में भगवान की कथा का श्रवण करके, भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करने में जो एक आनंद है, जो प्रभाव है, वो अकेले में करने से नहीं होता है। इसलिए भक्तों के संग में आने से जितने भी अन्य अंग हैं भक्ति के, वो सभी पूर्ण हो जाते हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चना भी हो जाती है, क्योंकि मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो ये सारी चीजें जितने भी भक्ति के अंग हैं, वो ऐसे भक्तों के संग में तीर्थ यात्रा में जाने से पूर्ण हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में बताया गया है, यस्यात्र बुद्धि कुरुपे विधातुके स्वधि कलत्रादिषु भवमहिच्छति यत्तीर्थ बुद्धि सलिलेन कल्पचित् सैव गोखरः। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति शारीरिक भावना में है, जो अपने आप को शरीर समझता है, हमारा शरीर तो तीन धातुओं से बना हुआ है, त्रिधातु के कफ, वात, पित्त आदि। तो जो अपने आप को कफ, वात, पित्त से बना हुआ शरीर समझता है, ये नहीं जानता कि मैं आत्मा हूँ, वो समझता है कि मैं शरीर हूँ। यस्य आत्मबुद्धि पुनपेत्र धातु के स्वधि कलत्रादिषु, ये मेरे जो पति हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, परिवार है, धन है, सगे संबंधी हैं, वो मेरे हैं, जो ऐसा भी समझता है। दूसरी बात, भौम इच्छति, जिस भूमि में मैंने जन्म लिया है, जिस स्थान में मैंने जन्म लिया है, वो सबसे पावन भूमि है, सबसे महत्वपूर्ण भूमि है, ऐसे समझना। यह तीर्थ बुद्धि ही सलिले न कहिचित, जब हम उसी किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, केवल वहां के कुंड या सरोवर या नदी में स्नान करने के लिए, अपने पाप को धो के आने के लिए, और वहां जो भक्त हैं उनका संग नहीं करना, कुछ श्रवण कीर्तन नहीं करना, केवल अपने पाप को धोने के लिए कहीं तीर्थ स्थान में जाके डुबकी लगा ली सरोवर में, नदी में स्नान कर लिया और चले आए। तो जो ये चार चीजें करते हैं, तो ऐसे लोगों की तुलना गाय और ऊंट से की गई है। इसका मतलब ये नहीं कि गाय को हीन दृष्टि से दिखाया जा रहा है। कहने का उद्देश्य है कि जो जिनका विचार और जिनके कार्य ऐसे होते हैं, वो मनुष्य नहीं कहलाते हैं, सच्चे मनुष्य नहीं कहलाते हैं। तो यहाँ इस श्लोक में यह तीर्थ बुद्धि सलिले न कर्मचित, ये बताया गया है कि तीर्थ यात्रा में जाने से केवल पाप को धोने के लिए जाना, स्नान करके चले आना, जनेषु अभिज्ञेषु सलिल को करना, तो भक्तों का संग न करके केवल पाप होकर चल जाना है, ये उचित नहीं है। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि भगवान के तीर्थ स्थानों में जाना, धाम में जाना, ये वर्जित है। कहीं ऐसे हमारे मन में विचार आ भी सकता है, परंतु हमें इस बात का स्पष्टीकरण होना चाहिए किस तरह की तीर्थ यात्रा वर्जित है। जिस तीर्थ यात्रा में हमारी भक्ति भावना नहीं होती है, हम भगवान के प्रति हमारे भक्ति या प्रेम को बढ़ाने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम आध्यात्मिक जीवन को गंभीरता से स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम केवल एक पर्यटक की तरह जा रहे हैं, या तो केवल अपने पापों को धोने के लिए जा रहे हैं, ताकि पापों के जो फल हैं, जो कष्ट या दुख के रूप में हमारे जीवन में आते हैं, उनसे हम बच के रहें, ताकि हम आगे चल के और पाप करते रहें और भोग करते रहें। तो इस भावना से तीर्थ यात्रा में जाना, भगवान के भक्तों के संग में नहीं रहना, भगवान के बारे में कुछ श्रवण कीर्तन नहीं करना, ऐसे तीर्थ यात्रा जो है ये वर्जित है। परंतु इस तरह की तीर्थ यात्रा जिसमें हम सब आए हैं, हम भक्तों के संग में हैं, भक्ति भावना युक्त हमारा हृदय है, भगवान का दर्शन करने आए हैं, प्रेम बढ़ाने के लिए भगवान की कथा सुनने आए हैं, तो ऐसे जो यात्राएं होती हैं वो बहुत हमारे भक्ति के लिए पोषक होती हैं, भक्ति लगा के लिए। तो ऐसे जो धाम यात्राएं हैं ये बहुत आवश्यक होते हैं। हाँ, यदि किसी की आर्थिक परिस्थिति ऐसी नहीं है कि वो नहीं आ सके, तो वो दूसरी बात है, भले अपने स्थान में रहे, अपने स्थान में रह के भक्तों के संग में नाम संकीर्तन करे, कृष्ण कथा करे, कृष्ण सेवा करे, तो वो भी अपने जीवन की सुख सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। परंतु यदि कोई किसी की आर्थिक परिस्थिति ऐसी है कि भले आ सके, थोड़ा कष्ट क्यों ना हो, थोड़ा इधर उधर कुछ कष्ट लेके जा भी सके, तो ये बहुत अच्छा है। एक बार जब श्री प्रभुपाद जी ने अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण महामृत संघ की शुरुआत अमेरिका के भक्तों को बताया था कि आप सब प्रतिवर्ष गौर पूर्णिमा के समय मायापुर आइए। अब देखिए, यहाँ से भी अमेरिका में मायापुर जाना काफी कष्ट होता है, कितने दिनों की यात्रा होती है, काफी खर्च भी होता है, और अमेरिका से यहाँ आने के लिए तो और भी ज्यादा समय लगता है, खर्च लगता है, खर्च भी होता है। तो एक भक्त ने प्रभुपाद जी से कहा कि श्री प्रभुपाद जी मंदिर के सारे भक्त जाएंगे, उस समय तो सारे भक्त जो है मंदिर में रहते हैं, आज जो हमारे संस्था में परिस्थिति है कि मंदिर में रहने वाले भक्तों की संख्या बहुत कम है और मंदिर के बाहर रहने वाले भक्तों की संख्या बहुत ज्यादा है, अधिक है। परंतु उन दिनों में जब संस्था केवल 2, 4, 5, 6, 10 सालों की थी, तो अधिक से अधिक भक्त ब्रह्मचारी, सन्यासी, गृहस्थ, माताजी, प्रभु जी दोनों मंदिर में सब रहा करते। लेकिन जब मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ती गई, जगह कम पड़ता गया और खर्च भी ज्यादा होता गया, तो धीरे धीरे से बाहर भक्त रहने लगे और प्रचार बाहर बढ़ता गया, गृहस्थ भक्त बनते गए, तो उस समय मंदिर में सभी लोग रहते थे। अब मंदिर के भक्तों को सब कुछ सब जाना है मायापुर अमेरिका से, तो कितना खर्च होता है। तो एक भक्त ने प्रभुपाद जी से कहा कि इतना खर्च होगा, हम सब मायापुर जाएंगे तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं, हम में से हम लोग यहीं रह जाए और जो पैसा बच जाएगा यात्रा में नहीं जाने से, तो उस पैसे का प्रयोग हम प्रचार के लिए कर सकते हैं। तो भक्त ने सोचा होगा कि प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होंगे कि कितना त्याग कर रहे हैं, देखो अपनी यात्रा त्याग त्याग कर रहे हैं और कितना विचार ऊंचा है कि पैसे बचा के वो भी प्रचार के लिए लगाना चाहते हैं, परंतु प्रभुपाद जी ने कहा कि ठीक है, यदि ऐसा ही है, पैसे बचा कर प्रचार में लगाना है तो खाना बंद कर दो, खाना बंद करने से और पैसा बच जाएगा, तो वो पैसा प्रचार में लगाओ। बस इतना ही उत्तर दिया प्रभुपाद जी। तो सारे भक्त जो हैं वो सही से समझ गए प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते थे प्रभुपाद जी? प्रभुपाद जी कहना चाहते थे कि जैसे शरीर को आहार चाहिए, उसके बिना हम कुछ काम नहीं कर सकते, ना भक्ति कर सकते हैं। जब उपवास करते हैं तो एक दिन उपवास करते करते प्राय जान निकल जाती है, किसी भी किसी तरह से एक दिन निकाल देते हैं, दूसरे दिन आ जाता है, यदि दूसरे दिन भी उपवास करना पड़ता, तीसरे दिन उपवास करना पड़ता तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक दो दिन बस उपवास रखने में कितना कष्ट होता है। तो आहार के बिना हम हमारा जप नहीं कर सकते, साधारण कार्य को भी नहीं कर सकते, उसकी ताकत नहीं होती है शरीर में। जिस तरह से भक्ति या कोई भी साधारण कार्य करने के लिए शरीर को ताकत चाहिए, पोषण चाहिए, ठीक उसी तरह से भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आत्मा को आहार या पोषण की आवश्यकता होती है। और अकेले में इस कलयुग में भक्ति करना बहुत मुश्किल होता है। भक्तों का संग चाहिए, धाम का प्रभाव चाहिए। तो मायापुर धाम इत्यादि जाके प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि सब भक्तों के संग में सबकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। खूब कीर्तन होगा, प्रवचन होंगे, सेवा होगी। तो ऐसे सारे भक्तों के बीच में रह के, उत्साही भक्तों में रह के हमारा जो उत्साह बढ़ जाएगा, तो ये बहुत पौष्टिक है आध्यात्मिक दृष्टि से। तो इसलिए प्रभुपाद जी इसके ऊपर बहुत जोर देते थे कि समय समय पर यहाँ पर हम ऐसे तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। परंतु ऐसा भी नहीं कि अपना काम छोड़ दे, अपना परिवार छोड़ दे, भ्रमण करते ही रहे। वो वैराग्यों के लिए ठीक हो सकता है, परंतु गृहस्थों के लिए नहीं, क्योंकि गृहस्थों को चाहिए कि अपने परिवार का भरण पोषण करें, देख रेख करें। परंतु वर्ष में एक बार दो बार जब भी संभव हो, भक्तों के संग ऐसे हम यात्राओं में आए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। इसी की आर्थिक परिस्थिति नहीं हो तो कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। कई बार भक्त संकोच करते हैं कि हम नहीं आ सकते यात्रा, कोई बात नहीं। भगवान की भक्ति के लिए कोई भौतिक सीमा नहीं है, बंधन बाधाएं नहीं है। अपने अपने स्थान में रह के जब कीर्तन आदि करके हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसलिए ये डाकोर आने की यात्रा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम पहले अपने यहाँ डाकोर आए हैं, इसके बाद हम अहमदाबाद होते हुए नाथद्वारा जाएंगे। नाथद्वारा में गोपाल जी विराजमान हैं, श्रीनाथ जी। वहाँ से हम लोग जाएंगे द्वारका, बेट द्वारका, फिर सोमनाथ और पोरबंदर, जहाँ सुदामा जी का निवास स्थान है या था, और फिर हम वापस अपने तो जिस स्थान में हम बैठे हैं, इस स्थान का नाम है डाकोर। तो ये बहुत प्राचीन तीर्थ स्थान है और इसका इतिहास है। कई ग्रंथ हैं जिनमें इस तीर्थ स्थान का, इस नाम का महात्म्य का वर्णन किया हुआ है। कई ऐसे किंवदंती भी है, किंवदंती अर्थात ये जो स्थल पुराण हैं, जो लोगों ने लोक कथा पीढ़ी पीढ़ियों से चलती आई है, उसे किंवदंती कहते हैं। तो ये स्थान बहुत प्राचीन है। यहाँ अनेक ऋषि मुनि आदि रहा करते थे पहले। हिरण भवन नाम था इसका। बहुत सारे वन सरोवर आदि यहाँ रहने के कारण अनेक ऋषि मुनि यहाँ आके तपस्या करते थे। उन्होंने अपना स्थान बनाया था। यहाँ अनेक आश्रम थे उस समय। उस समय नाम डाकोर नहीं था। डाकोर अब बना। अब यहाँ डाकोर प्रसिद्ध है रणछोड़ राय मंदिर के लिए। तो भगवान रणछोड़ राय क्यों बुलाए जाते हैं वो आज हम शाम को सुनेंगे। आज केवल डाकोर के बारे में कुछ कहने का प्रयास करेंगे अब। और ये मंदिर का इतिहास क्या है, ये विग्रह यहाँ कैसे आए, इसकी चर्चा हम थोड़ा करेंगे। परंतु यहाँ डाकोर में जब आए हैं तो यहाँ के लोग, बल्कि सारे गुजरात में लोग आपस में जब बात करते हैं तो सब रणछोड़ राय जी के प्रेमी हैं, द्वारकाधीश के प्रेमी हैं। गुजरात में कृष्ण का महाभारत बहुत फैला हुआ है। जब वो फोन पर बात करते हैं किसी से तो तुरंत पहले कहते हैं जय श्री कृष्ण। आपस में मिलते हैं पहली बार तो जय श्री कृष्ण। तो यहाँ कृष्ण भावनामृत काफ़ी फैली हुई है, यहाँ संस्कार है। तो खास करके रणछोड़ राय जी के बारे में यहाँ डाकोर में, यहाँ जब एक दूसरे से बात करते हैं लोग, एक कोई मिलता है दूसरे को सड़क में तो एक कहेगा मंदिर में कौन छे, मंदिर में कौन छे अर्थात मंदिर में कौन है, और दूसरा उत्तर देगा राजा रणछोड़ छे। ये हाई हेलो की बात नहीं करते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं कहीं सड़क में तो जब कहते हैं मंदिर में कौन छे, मंदिर में कौन छे, छोड़ छे, मंदिर में कौन छे, छोड़ छे, कैसे बात है। तो यहाँ पे सब जैसे धाम में होता है कि हर एक नस नस में उनमें भगवान पर समाये गए होते हैं। तो यहाँ रहते हुए जो रहने वाले जो भी लोग हैं रोज रणछोड़ राय जी का दर्शन करने जाते हैं। स्वाभाविक प्रेम तो है उनका रणछोड़ राय जी के प्रति। तो यहाँ पहले रणछोड़ राय जी की यहाँ पधारने के पहले ये प्राचीन इतिहास है। हिरण भवन था और यहाँ पे अनेक ऋषियों के साथ साथ दंक ऋषि भी आए थे। उन्होंने अपना आश्रम यहाँ पे बना लिया था। दंक ऋषि के साथ उनके और शिष्य भी हुए होंगे तो यहाँ पर रह के वो तपस्या करते थे। बहुत ही रमणीय सुंदर वातावरण था यहाँ पे, जंगल पेड़ सरोवर आदि। तो यहाँ पर रह के उन्होंने अपना आश्रम बनाया। तो तपस्या के बाद जो है शिव जी बहुत प्रसन्न हुए उनके ऊपर। तो शिव जी प्रकट हुए उनके सामने। उन्होंने कहा कि क्या चाहिए आपको, क्या वरदान चाहिए। तो दंक ऋषि ने कहा कि कृपया आप यहाँ पर इस स्थान में हमेशा के लिए रहिए, आप जाइए बस यहाँ से। तो शिव जी फिर वहाँ अपने शिवलिंग रूप में रहे और इसलिए उनका नाम यहाँ पर है दंकनाथ महादेव। और इसके बाद इस स्थान का नाम हुआ दंकपुर। दंकपुर का अपभ्रंश होते होते अब डाकोर हो गया। तो आजकल लोग इसे डाकोर बुलाते हैं, परंतु प्राचीन नाम दंकपुर था दंक ऋषि के पीछे। महाभारत के समय की बात है कि श्री कृष्ण और भीमसेन यहाँ से गुजरते हुए जा रहे थे। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित के यज्ञोपवीत संस्कार को के लिए जा रहे थे। तो यहाँ से जब जा रहे थे तो इस स्थान में आ पहुँचे। थोड़े थके हुए थे तो भीमसेन को प्यास लगी थी। तो श्री कृष्ण ने कहा कि यह दंक ऋषि का आश्रम पास में है और वहाँ पास में एक तालाब है, तो वहाँ हम लोग जलपान कर लेते हैं। उसको गोमती तालाब कहते हैं। तो गोमती तालाब पर जाके उन्होंने जलपान किया, शीतल जल था, मधुर जल। भीमसेन बड़े संतुष्ट हो गए। वहाँ विश्राम करने के लिए भी कई पेड़ थे, उनके छाँव के नीचे बैठे विश्राम किया। तो भीमसेन को लगा कि यह पानी बहुत शुद्ध है, मीठा है, मधुर है, पावन है, तो इस तालाब को क्यों ना प्रहार किया जाए। तो अपने गले का प्रहार एक बार भूमि पर करने से वो बहुत बड़ा हो गया तालाब, और उस समय तो और भी बहुत बड़ा था, और इसलिए गोमती तालाब जो है ये यहाँ बन गया। पहले से था, भीमसेन के आने के बाद और भी बड़ा बन गया। फिर श्री कृष्ण ने भीमसेन से कहा कि चलो यहाँ पर धनकर ऋषि हैं, मेरे भक्त हैं, जाके थोड़ा मिल लेते हैं। तो श्री कृष्ण भीमसेन के साथ आए धनकर ऋषि के आश्रम में। धनकर ऋषि ने देखा, बहुत भाव विभोर हो गए, दंडवत प्रणाम किया, भगवान की स्तुति की। भगवान धनकर ऋषि के ऊपर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि क्या वरदान चाहते हो, कुछ मांगो। तो धनकर ऋषि की विचारधारा एक तरफ की थी, उनका आप ही रह जाना हमेशा के लिए, यहाँ से जाना नहीं, स्थान को छोड़ के जाना नहीं, आप शिव जी के साथ में रहना। तो अब श्री कृष्ण सोचने पड़ गए, अरे कैसे किया जाए, क्या किया जाए, शिव जी तो है यहाँ। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा, लेकिन तुरंत इस समय नहीं हो पाए। मैं अपने विग्रह के रूप में जब द्वारका में रहूँगा 4,225 वर्षों तक, उसके बाद फिर मैं द्वारका छोड़कर यहाँ आऊँगा और यहाँ पर फिर मैं निवास करूँगा। तो फिर धनकर ऋषि बहुत प्रसन्न हो गए, ठीक है, भगवान की इच्छा है कि वो इस समय नहीं, बाद में यहाँ पर इस स्थान में आएंगे, मेरे आश्रम में रहेंगे। तो धनकर ऋषि की भूमिका यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, उनके पीछे ये गाँव का नाम है। फिर भी भगवान को यहाँ लाने के लिए, अर्थात भगवान का जो अर्चा विग्रह है रणछोड़ भाई जी, उनको यहाँ लाने के लिए श्रेय जाता है एक और भक्त, जिनका नाम है विजयानंद गोराना। अभी हम सब दर्शन करने गए थे, आपके से थोड़े भक्त भी साथ में थे, तो गोराना के स्थान में भी हम गए थे, और रणछोड़ जी के मंदिर में, लक्ष्मी जी के मंदिर में तो वो ही आए हैं। तो इनका इतिहास संक्षेप में कहना थोड़ा उचित रहेगा किस समय। वैसे ऐसे बताया जाता है कि यहाँ की भगवती ऐसी है कि एक ब्रजवासी हुआ करते थे, मथुरा में रहते थे, मथुरा मंडल में, उनका नाम था विजयानंद, एक वाले थे। तो एक बार ऐसे हुआ कि होली मनाई जा रही थी, श्री कृष्ण भी वहाँ पर थे, तो किसी कारणवश विजयानंद को वहाँ पर नहीं गए, वो अपने घर में रहे। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि विजयानंद मेरे साथ होली मनाने के लिए नहीं आया, तो स्वयं श्री कृष्ण अपने वेश बदल के विजयानंद के पास गए और सुलाकर लेके आए। तो विजयानंद को बाद में पता चला कि स्वयं श्री कृष्ण ही आए थे मुझे ले जाने के लिए। अगले दिन खूब आनंद से होली कर की पीड़ा कर ली, परंतु विजयानंद को थोड़ा बुरा लगा कि पहले मैं गया नहीं था, स्वयं श्री कृष्ण को मुझे बुलाने के लिए आना पड़ा। तो खैर, तो श्री कृष्ण के पास आए, क्षमा याचना की। तो श्री कृष्ण प्रसन्न थे उनके ऊपर, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, वरदान देता हूँ कि लगभग 4,200 वर्ष बाद में तुम प्रकट हो जाओगे और गुजरात में तो मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा और तुम ले आओगे मुझे द्वारका से और एक बड़ा मंदिर स्थापित करोगे। तो उज्जैन ने कहा ठीक है। और ऐसे बताया जाता है कि उज्जैन का जन्म हुआ यहाँ पर एक राजपूत क्षत्रिय परिवार ने, कि हाँ उनका नाम बेटा हो रहा था, क्योंकि पहले पूर्व जन्म का इतिहास ऐसे था तो इस जन्म में भी कोरोना के रूप में जन्म लेने के बाद उनके हृदय में एक स्वाभाविक प्रेम और आकर्षण द्वारकाधीश श्री कृष्ण के प्रति था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं अपने तात्पर्यों में कि भक्ति में आना इतना ये संभव नहीं है जब तक कि किसी का भक्ति के साथ संबंध पूर्व जन्म से न हो। तो बोड़ाना का इतना तीव्र संबंध पूर्व जन्म से था, इसलिए जब यहाँ बोड़ाना के रूप में जन्म हुआ तो स्वाभाविक रूप से वो कृष्ण भक्ति में लगे रहे। और फिर हर छह महीने में वो एक बार यहाँ डाकोर से द्वारका जाते थे द्वारकाधीश भगवान का दर्शन करने के लिए, और अपने हाथ में वो तुलसी को साथ में लेकर जाते थे और फिर वहाँ तुलसी अर्पण करते थे भगवान को, भगवान की खूब स्तुति करते थे, सेवा करते थे, बहुत श्रद्धालु भक्त थे भगवान। ऐसे छह महीने में एक बार जाया करते थे, साल में दो बार, और ऐसे 70 साल उन्होंने किया। प्रति वर्ष दो बार निश्चित था उनका जाना, और द्वारका के सारे पुजारी और लोग भी जानते थे बोड़ाना को कि इतने सालों से ये आते हैं, बिना चूके हुए आते हैं दर्शन करने के लिए, पैदल आते थे यहाँ से द्वारका। हम लोग तो बड़े आराम से बस से जाएंगे, और वो भी काफ़ी शिकायत होगी उनको, अरे यहाँ तक हो रहा है और गाड़ी में तकलीफ हो रही है। लेकिन बोड़ाना प्रति साल दो बार पैदल जाते थे डाकोर से द्वारका और लौट के आना, और ऐसे जाते थे और द्वारका देश की खूब सेवा करते थे, सभी लोग उनको अच्छी तरह से जानते थे। लेकिन जब वो बूढ़े हो गए, 70 से अधिक की आयु हो गई, ये भी बेचारे जाया करते थे, 60, 65, 70 की आयु में भी जाते थे साल में दो बार पैदल। परंतु आगे चल के फिर उन्होंने सोचा कि अब हमसे नहीं जाया जाएगा, अब शरीर साथ नहीं दे रहा है, इसलिए जब वो द्वारका गए तो उन्होंने द्वारकाधीश भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब इसके बाद मैं आपके पास नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि अब मेरा शरीर बूढ़ा हो चुका है और इतनी दूर चल के आना मेरे लिए संभव नहीं होगा, तो ये आखिरी बार मैं आ रहा हूँ, इसलिए इसके बाद नहीं आऊँगा, इसके लिए आप मुझे क्षमा कर दें। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अरे तुमको चिंता नहीं करना, तुम यहाँ आने का कष्ट नहीं लेना, मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगा। तो बोला ने कहा अरे ये कैसे हो सकता है, आपका स्थान है, आपका धाम है, आपका मंदिर है, आप विदेह हैं, आप कैसे आए बेटा, को ये तो संभव नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, अगली बार जब आओगे तो अपनी बैलगाड़ी लेकर आना। तो बोला था ठीक है। तो देखिए, भगवान का संबंध जो उनके भक्तों के साथ होता है वो इतना मधुर होता है, प्रेम का जो आदान प्रदान भक्तों के बीच में भगवान के बीच में होता है बहुत निराला होता है, विशेष होता है। जिस तरह भक्त भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, कोई भी कष्ट कम ज़्यादा नहीं होता उनके लिए यदि भगवान की सेवा करनी होती है, तो ठीक उसी तरह भगवान भी कोई भी कष्ट लेने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि वो भक्त के छोटी सी सेवा को बहुत ज़्यादा मानते हैं। ईश्वर स्वभाव भक्त न लड़े अपराध, अल्प सेवा करूँ माने आत्म पर्यंत प्रसार। कविराज गोस्वामी बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि भगवान का स्वभाव होता है कि भक्तों का अपराध वो स्वीकार नहीं करते हैं। यदि उनके कोई प्रेमी भक्त होते हैं और वो कभी गलती कर लेते हैं भगवान के प्रति, भगवान का अपराध कर देते हैं, सेवा अपराध या कुछ भी हो जाए, तो भगवान गंभीरता से नहीं लेते हैं। यह है भगवान का स्वभाव। जिस तरह से एक माँ अपने छोटे बच्चे की गलती कुत्तियों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती, कभी कभी छोटा बच्चा जो है अपने माँ के शरीर के ऊपर मधु त्याग देता है तो माता उसको पुलिस स्टेशन नहीं ले जाती है, उसका देखभाल करती है, साथ में रहती है, न वकीलों के पास जाती है। तो ये इसी तरह से भगवान अपने भक्तों के अपराधों को स्वीकार कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान के प्रति अपराध करने से डरे नहीं कि चलो छूट मिल गया, ये हम तो भक्त हैं ना, तब थोड़े अपराध कर भी लेते हैं तो क्या समस्या होगी। नहीं, जानबूझकर ऐसे सच्चे भक्त कभी नहीं करते हैं। अनजाने में कभी ऐसे हो भी जाता है तो भगवान इतने कृपालु होते हैं कि भक्तों के अपराध को स्वीकार नहीं करते हैं। अल्प सेवा बहुमानी आत्मपर्यंत बसा है। तो भगवान का स्वभाव केवल ऐसा नहीं है कि वो भक्तों के अपराध को स्वीकार नहीं करते। वो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि भक्त लोग जो है भगवान की सेवा करते हैं, और यदि कोई भक्त अल्प सेवा भी करे, बहुत कम सेवा भी करे, उसको भगवान बहुत बड़ा मानते हैं। छोटी सी सेवा को बहुत बड़ा मानते हैं भगवान, और इतना बड़ा मानते हैं और इतने ऋणी हो जाते हैं अपने भक्तों के प्रति जो कि उनकी अल्प सेवा करते हैं, तो भगवान अपने आप को भी बेच डालते हैं उस भक्त को और अपने भक्त के हवाले को कर लेते हैं। तो ये है भगवान के गुण, भगवान के लक्षण, भगवान का चरित्र। तो भगवान ने देखा कि ये बेचारे मौलाना 70 साल से आ रहे हैं, 150 बार कम से कम आए होंगे यहाँ मेरा दर्शन करने के लिए, कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं, और हाथ में हमेशा तुलसी के मटके को लेकर साथ में आते थे, फिर तो भगवान को तुलसी अर्पण करते थे। तुलसी अर्पण करना भी भगवान के लिए बहुत बड़ी सेवा मानी जाती है। तुलसी दल मात्र जलस चुकी हवा विक्रीण दे स्वमात्मान भक्त जो भक्तवत सलाहा, ऐसे श्लोक है शास्त्र में। यदि किसी ने भगवान को तुलसी दल अर्पण किया और थोड़ा सा जल भी अर्पण किया, गंगा जल आदि तुलसी के साथ अर्पण किया, तो विक्रीण दे स्वमात्मान भक्त, तो भगवान अपने भक्तों को अपने आप को बेच डालते हैं, भक्तों के हवाले हो जाते हैं। विक्रीते मतलब बेच डालते हैं अपने आप, भक्तों की संपत्ति बन जाते हैं, क्योंकि उनका लक्षण है, उनका नाम है भक्तवत्सल, जो अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। तो बोला ना, इतना कष्ट लेकर जाते थे, इतनी भक्ति से जाते थे और वहाँ जाकर तुलसी अर्पण करते थे, श्रद्धा से भगवान की सेवा ऐसे करते थे, तो भगवान बहुत ऋणी हो गए। तो भगवान द्वारकाधीश ने सोचा कि अरे देखो, बुढ़ापे में भी, जवानी की बात तो दूर है, बुढ़ापे में भी ये भक्त मेरा इतना श्रद्धालु है और इसका निश्चय इतना दृढ़ है, दृढ़ संकल्प ही है मेरा भक्त मेरी सेवा करने के लिए, कि मैं तो क्या कर सकता हूँ इसके लिए, मैं इतना ऋण बन गया हूँ, तो मेरे लिए एक ही उपाय है, आप बेचारे ये मेरे पास नहीं आ सकता है तो मुझे उसके पास जाना। जिस तरह से भक्त भगवान के बिना रह नहीं सकते, उसी तरह से भगवान भक्तों के बिना रह नहीं सकते हैं। यह है प्रेम का संबंध। साधो हृदय मध्यम साधुना हृदय मत अन्य जानती ना हम ते भ्यो मना कभी। श्रीमद् भागवत में भगवान दुर्वासा मुनि को कहते हैं कि मेरे साधुओं के मेरे भक्तों के हृदय में मैं हूँ और मेरे हृदय में मेरे भक्त हैं, मेरे भक्त मेरे सिवाय कुछ नहीं जानते और मैं मेरे भक्तों के सिवाय कुछ नहीं जानता। देखिए कितनी सुंदर बात है। तो भगवान और भक्तों का जो संबंध होता है कितना मधुर होता है, कितना सुंदर होता है। तो भगवान अब इतने ऋणी हो गए थे भोलाना के कि ये इतने दृढ़ संकल्पी थे, इतने श्रद्धालु थे। आजकल कोई जवान भी हो फिर भी अपना संकल्प नहीं बनाए रखता, इतना श्रद्धालु नहीं होता है। परंतु बुढ़ाना इतने बुरे होने के बाद भी सोच रहे थे कि कैसे मैं प्रति साल प्रति वर्ष जाऊँगा, साल में दो बार जाऊँगा। हरिदास ठाकुर भी ऐसे ही थे, काफ़ी वृद्धावस्था में भी उन्होंने अपने नाम व्रत को त्यागा नहीं। जबकि चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं हरिदास ठाकुर से कहा कि अब तुम इतने भूखे भूखे हो, तुम्हारा शरीर साथ नहीं देता है, तो अब ये सब तपस्या करने की उसे व्रत धारण करने की आवश्यकता नहीं है, तो थोड़ा आराम कर लो। नाम जप करने का जो लाभ है वो तो प्राप्त कर ही चुके हो, कृष्ण प्रेम तुम्हें मिल ही गया है, इसलिए अब चिंता नहीं करना। लेकिन हरिदास ठाकुर ने कहा नहीं, मैं तो बहुत पतित व्यक्ति हूँ, बहुत पापी हूँ, तो मेरा शरीर ठीक है, केवल मेरा मन कष्ट दे रहा है मुझे और ऐसे कह रहा है कि तुम्हारा शरीर ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। लेकिन वास्तव में केवल मन ठीक नहीं है, इसलिए मैं ये बहाना बना रहा हूँ। तो भक्तों का सोच विचार ऐसे होता है। तो खैर उन्होंने बताया भगवान ने मौलाना को कि अगले साल बैलगाड़ी लेकर आना और मैं तुम्हारे बैलगाड़ी में बैठ के जाऊंगा। तो मौलाना कहा ठीक है, तो चले गए वहां से। अब अगले बार अंतिम यात्रा के लिए आए, मौलाना ने सोचा कि वैसे तो पिछली बार मेरी अंतिम यात्रा होनी थी लेकिन भगवान ने इस बार बुला लिया, तो चलो गए हैं, हम जाएंगे इस बार भी, लेकिन इस बार तो बैलगाड़ी लेकर जाना है, अंतिम यात्रा अंतिम बार तक। तो निकल पड़े धीरे 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 से चलते चलते, बैलगाड़ी तो बैलगाड़ी है, तो चलते चलते पहुंच गए द्वारका। तो पहुंचे तो सारे वहाँ के जो पुजारी थे, सेवक थे, गुगली ब्राह्मण नाम के ब्राह्मण का एक वंश होता है, गुगली ब्राह्मण एक प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। तो उन्होंने देखा, द्वारका के निवासी ने देखा कि इस बार मौलाना बैलगाड़ी में आया है। अरे मौलाना क्या बात है, बैलगाड़ी क्यों लेकर आया हो? तो मौलाना ने कहा कि द्वारकाधीश ने कहा है कि वो मेरे बैलगाड़ी में बैठकर मेरे साथ वापस ठाकुर जाएंगे। अरे ऐसे थोड़ी हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसे। फिर उन्होंने सोचा ऐसे कैसे हो, भगवान तो विग्रह हैं, मूर्ति हैं, वो कैसे वो निकल के आएंगे और वो कैसे बैठेंगे और ये घोड़ा में कैसे ले जाएगा इतनी दूर ठाकुर, ये तो संभव नहीं है, ये तो इन्हें बोल रहे हैं, बुरे हो गए हैं उससे बोल रहे हैं। परंतु फिर भी हृदय के कोने में कहीं सच्चे था कि कहीं ये सच बोल तो नहीं रहा, हो भी सकता है क्या पता। तो सोचा चलो अब भगवान के गर्भ गृह में मंदिर में बहुत बड़े बड़े ताले हम लगा दें सब जगह, ताकि कोई कष्ट न होता कि भगवान निकल नहीं पाए अंदर से। तो बहुत बड़े बड़े ताले लगा दिए, अब भगवान के लिए ताले हैं कोई बाधक वस्तु थोड़ी बन सकती है। भगवान का प्रेम इतना तीव्र है कि ताले उनके रास्ते में कैसे आ सकते हैं। यह वसुदेव ले जाना चाहते थे कृष्ण को मथुरा, मथुरा से गोकुल, तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सारे जो हाथों में जो कड़ियां थी जंजीर थी वो सब निकल पड़े, गिर पड़े, जो भी कारागार के जो ताले थे वो सब खुल गए भगवान की योजना से। तो इसी तरह से यहाँ पर भगवान की योजना से ये सारे ताले खुल गए भगवान के लिए। और भगवान चले आए बोडाने के पास कि चलो तुम्हारे बैलगाड़ी पर मैं चढ़ता हूँ। बोडाना तो इतने शुद्ध भक्त थे, उनको आश्चर्य नहीं हुआ कि भगवान बोल रहे हैं, चल रहे हैं, उठ के चढ़ के मेरे बैलगाड़ी में बैठ गए हैं। ये बड़े कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो तो भगवान को व्यक्ति ही मानते हैं ना, भगवान को कोई पत्थर की प्रतिमा तो नहीं मानते। तो जितनी हमारी श्रद्धा होती है वैसे वैसे भगवान हमारे साथ व्यवहार करते हैं। तो बोलाना फिर चलाने लगे बैलगाड़ी को और पीछे खड़े रहे भगवान द्वारकाधीश। अब चलते चलते बैलगाड़ी तो धीरे 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 चल रही थी और भगवान सोच रहे थे अभी गोगली ब्राह्मण आएंगे पीछा करके, अब इस गति से चलेंगे तो फिर क्या होगा, ये तो जल्दी से पकड़े जाएंगे। तो उन्होंने बोलाना से कहा, तुम बहुत भाग गए हो, ऐसा करो मैं बैलगाड़ी चलाता हूँ, तुम पीछे आ जाना और तुम आराम कर लो, वैसे भी अब रात का समय है, तुम सो जाओ मैं बैलगाड़ी चला देता हूँ। तो भगवान आए फिर से सारथी बने अपने भक्त के, इस बार रथ नहीं चला रहे थे बैलगाड़ी चला रहे थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में उन्होंने रथ चलाया था जैसे 5 घोड़े थे, शानदार घोड़े, और यहाँ अब बैलगाड़ी चलाने लगे। तो बैलगाड़ी जब जो भी हो, जब भगवान भी बैलगाड़ी चलाती है तो वो बिजली से भी ज्यादा तेज दौड़ती। तो जल्दी से बैलगाड़ी पहुंच गई डाकों के बाहर, ज्यादा समय नहीं लगा। और जैसे ही भगवान उस बैलगाड़ी में बैठ के निकल पड़े वहां से, तब हल्ला हो गया सारे द्वारका में, अरे बोलाने के साथ भगवान चले गए, भगवान बैलगाड़ी में बैठ के चले गए, बोलाना ले गया उनको। सारे गोगुरी ब्राह्मण बहुत क्रोधित हो गए, हाथ में अपने सारे अस्त्र शस्त्र लेकर सब उठे, कोई तलवार कोई क्या कोई चाकू कोई लेकर चले और वो निकल पड़े और चले गए डाकोर की ओर। भगवान तो जानते थे कि ये पीछा करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने बैलगाड़ी अपने हाथ में ले ली थी। अब बेचारे बोलाना तो सो गए थे, वो तो भगवान के आश्रय में थे, उनको क्या चिंता थी, चिंता तो भगवान को। इसलिए जब भक्त जो होता है, भक्त को चिंता करने में कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान चिंता करते होते हैं। जैसे बच्चा होता है, बच्चे को कभी सोचना नहीं पड़ता कि कल माता पिता मुझे भोजन देंगे कि नहीं देंगे, व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, आमदनी कम हो गई है, ये बच्चे को क्या चिंता रहती, बच्चे को क्या पता होता है। बच्चे को पूरा विश्वास होता है कि माता पिता मुझे पूरा भोजन देंगे, देखभाल करेंगे, चिंता माता पिता को होती है, पालकों को होती है। ठीक उसी प्रकार से बोलाना में क्या चिंता, वो तो सो गए अपने बैलगाड़ी में, अब चिंता भगवान को करनी थी कि ये लोग आएंगे तो क्या करेंगे, इनसे कैसे निपटाएंगे। तो खैर वो चले आए एक जगह डाकोर के बाहर, वो रुके, वहाँ एक नीम का पेड़ था, तो नीम के पेड़ का एक शाखा जो था वो नीचे तक आ रहा था, तो उसको उसका स्पर्श के भगवान उसको पकड़ के ऐसे रखे और फिर कहा बोड़ाना से कि अब तुम फिर से सामने आ जाओ, पत्थर मूर्ति बन के रहूंगा, क्योंकि अब जब डाकोर पहुंची के सभी लोग देखेंगे, सभी लोगों को भगवान दिखाना नहीं चाहते थे कि भगवान का श्री विग्रह बैलगाड़ी चला कर लेके आ, फिर से आकर फिर से खड़े हो गए और फिर से बोड़ाना बैलगाड़ी चलाने लगे। अब ये नीम पेड़ बड़ा विचित्र है, क्योंकि भगवान ने स्पर्श किया, अब आप तो जानते हैं कि नीम का पेड़ जो होता है, नीम के जो पत्ते आदि होते हैं, नीम का फल जो होता है वो बहुत कड़वा होता है, लेकिन ये एक शाखा है जिसमें बहुत सीधा है, इसलिए गुजराती में बोलते हैं क्योंकि भगवान ने स्पर्श किया था। अखा लिगड़ा ना डाल मिठी रे रंग छोड़ रंगीला, ऐसे बोलते हैं। एक गुजराती भाषा में एक गाना है कि ये जो सारा नीम पेड़ है इसका ये एक ही जो इसकी एक डाली है ये केवल मीठी है जबकि बाकी सब कड़वा है। रणछोड़ राय ने स्पर्श किया था इसलिए। तो कहते हैं कि आज भी वो एक स्पर्श है। पिछली बार गए थे तो याद नहीं, चक्के तो नहीं देखा था लेकिन खैर उस समय ऐसे था। और आगे जब चले तो वहाँ और एक गरीब ब्राह्मण के सामने आके खड़े हो गए और उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया, सेवा अर्पण की। तो ये कौन थे ऐसे बताया जाता है कि जिस वृक्ष को काट के बैलगाड़ी बनाई गई थी, बैलगाड़ी की लकड़ी जहाँ से जिस वृक्ष से आई थी, वो वृक्ष का जन्म अभी ब्राह्मण के रूप में हुआ। अभी देखिए ये बैलगाड़ी कृष्ण के भक्त की थी और स्वयं श्री कृष्ण बैलगाड़ी पर बैठे तो वृक्ष को भी फायदा हुआ। तो वृक्ष जो आत्मा वृक्ष के शरीर में थी, एक पेड़ के शरीर में, अब उसे एक ब्राह्मण का शरीर मिल गया क्योंकि भगवान की सेवा हो गई। तो देखिए जब हम फल फूल आदि समर्पण करते हैं भगवान को तो न केवल हमें फायदा होता है जो प्रसाद ग्रहण करने वाले हैं, परंतु जिस पेड़ पौधों से अब वो अर्पण किया जाता है उनका भी फायदा होता है। इसलिए वैसे एक बात बता रहे थे कि दूसरे जगह में कई उनके मंदिर के प्रांगण में बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, कई पहाड़ थे, पहाड़ी इलाका था, जिस तरह से हमारा गोकुल नाथ है वैसे ही इलाका था अमेरिका में। तो वहाँ सेब के पेड़ भी हुआ करते थे। तो एक वक्त में पेड़ से सेब निकाले और एक खाने लगा तो दूसरे वक्त में पूछा, अरे भाई ऐसे ही पेड़ से सेब तोड़ के खाने लगे हो, अर्पण नहीं किया, भोग नहीं दिखाया भगवान को? तो उसने कहा कि मैंने सारा पहाड़ तो पहाड़ भूल रहा है, जितने भी पेड़ हैं सेब हैं वो सब बहुत बहुत अर्पण कर लिए, मैं ऐसे ही खा रहा हूँ। ऐसे नहीं, अब ऐसे नहीं करना है, जब पेड़ अर्पण करना चाहिए। और जब अर्पण करते हैं तो पेड़ को भी कितना लाभ होता है, वो पेड़ भी आके एक जीव है, उसको भी एक पेड़ का शरीर मिला है और न जाने उसका इतिहास क्या है कि उसको ऐसे पेड़ का शरीर मिला कि जिस पेड़ से वहाँ से या फल या फूल दूसरा हो भगवान को अर्पण हुआ है, तो उसका कितना सौभाग्य है। बल्कि ऐसा जन्म एक मनुष्य जीवन से भी ज्यादा अच्छा है क्योंकि निम्न योनि में होने के बाद भी वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, परंतु मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद कोई भगवान की सेवा नहीं कर रहा है तो ऐसे मनुष्य देह प्राप्त करने से क्या लाभ होता है। तो इसलिए हमें ये भी देखना चाहिए कि हम अपने घर में ही, कई बार हम बता चुके हैं, अपने घर में हमें पेड़ पौधे अपने हाथों से उगाने चाहिए और अपने हाथों से फूल तुलसी आदि निकालकर भगवान को अर्पण करने चाहिए। इनसे हमारा लाभ होगा, हमारी भक्ति बढ़ेगी, साथ साथ जितने भी ये पेड़ पौधे हैं वृक्ष हैं उनका भी उद्धार हो जाएगा क्योंकि इनकी ये भगवान की सेवा में को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो खैर अब वो ब्राह्मण वहाँ खड़े रहे फिर वो आगे चले गए और तब तक ये लोग पीछे घोड़े के ऊपर बैठ के आ गए दौड़ते दौड़ते गोकुली ब्राह्मण द्वारका से। अब खबर सब जगह ठाकुर फैल गई, आ रहे आ रहे आ रहे, उनकी खबर तक वहाँ से पहुँच गई। अब ये डर गए रोजाना कि अब क्या किया जाए। तो कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, मुझे इस बहुत ही तालाब में रख दो स्थान में। तो उनका भगवान का विग्रह है द्वारकाधीश का वो वहाँ पर रखा गया पानी के अंदर। और तब तक जैसे ही वो अंदर रखा कि ये सारे लोग द्वारका से आ गए, बहुत गुस्से रहते सब लोग, हमारे यहाँ से कैसे तुमने द्वारकाधीश को ले लिया, तुमने कैसे उठा लिया, और द्वारकाधीश आए भी कैसे तुम्हारे साथ। और उसके काम के लिए तो एक है कि उनके द्वारकाधीश वहाँ से निकल के दक्षिणा के लिए रास्ता था, तब बड़ी कठिनाई हो गई। तो इतने गुस्से में थे कि एक कथा ऐसी है कि एक ने कोई अस्त्र फेंक दिया, घोड़ा ना तो लग गया, घोड़ा ना बेचारे वहाँ कोई लोग कहते हैं नहीं मृत्यु नहीं हो, खैर जो भी हो और हो गई तो फिर सब लोग ढूंढने लगे अब कहाँ है कहाँ है। किसी ने कहा घर में ढूंढा, सारे गांव के घरों में ढूंढा, कहीं नहीं मिले। तो किसी ने कहा कि यहाँ देखो इन्होंने इस तालाब में द्वारकाधीश को रखा है। तो अपने अस्त्रों से आदि वो सब तालाब में देखने लगे और अचानक क्या हुआ कि गोमती तालाब का जल लाल लाल हो गया। फिर उनको पता चला कि उद्धार वाला एक अस्त्र है जो उन्होंने जल के अंदर डाला था, उससे द्वारकाधीश का शरीर को घाव पहुंच गया और उनके शरीर से खून निकला, इसलिए वो सारा जल जो है लाल लाल हो गया। तो घबरा के तुरंत रुक गए वहाँ, तो गृह तो बाहर आ गए, लेकर आए द्वारकाधीश को बाहर। लेकिन ऐसे कहते हैं यहाँ डॉक्टरों ने कि जिस स्थान में वहां उनका विग्रह था वहां की मिट्टी आज भी लाल है, बल्कि दूसरे जगह में मिट्टी तालाब में लाल रंग की नहीं है, जैसे मिट्टी का रंग होता है वैसे। तो क्या अभी वो बाहर आए, अब गोदाना की मृत्यु भी हो गई थी तो, लेकिन फिर भी जो गुगली ब्राह्मण थे द्वारका के वो बहुत प्रभावित थे। द्वारकाधीश से कह रहे थे, तो उनके पत्नी से कह रहे थे आपको मिलना ही होगा, आप भेजना ही होगा, आपको आना ही होगा, द्वारकाधीश से कहने लगे। तो द्वारकाधीश अब क्या करते, तो अब ये बोलाना की पत्नी का नाम था गंगाबाई, जो उनके पूर्व जन्म की भी पत्नी थी, उस समय उनका नाम था सुधा देवी। तो अब ये गंगाबाई थी, तो गंगाबाई बेचारी बहुत गरीब औरत है, क्या करती अकेली। तो उन्होंने द्वारकाधीश से कहा आपको कोई रास्ता निकालना है। तो द्वारकाधीश ने कहा कि देखो तुम्हारे घर में कोई सोना है तो देखो। तो मेरे पास कहाँ सोना है, मेरे पास तो कोई सोना नहीं है, हम तो बहुत गरीब हैं, फिर भी जाके अपने घर की सफाई करो, कुछ तो मिलेगा। तो सफाई करते करते कभी कचरा था उसमें से एक छोटा सा सोने का आभूषण मिला, नथ जो नसिक नाक पर टंगा जाता है, वो आधा ग्राम था सोना, आधे ग्राम का सोना था। तो वो आभूषण दिया और वो आई का इतना ही सोना है। तो द्वारकाधीश ने कहा उनको सांत्वना दी गुगली ब्राह्मण को, द्वारका के ब्राह्मणों को, और कहा कि कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ आ गया हूँ, अब मुझे यहाँ रहना होगा, लेकिन मैं तुम लोगों को मेरे वजन मेरा वजन जितना है उसमें उतना ही बराबर मैं आपको सोना दे दूँ, ठीक है, चल वो सोना मिल जाएगा। तो जब वजन करने गए तो क्या हुआ कि जितने आधे ग्राम का वजन था उतना ही भगवान के विग्रह का वजन हुआ। तो ये ले दिया उनका, बोले चलो आधा ग्राम सोना ले लो, लेकिन इतने में थोड़ी मानने वाले थे वो द्वारका के ब्राह्मण, वो तो सेवक थे द्वारकाधीश के, साथ साथ उनकी भक्ति के अतिरिक्त उनकी जीविका भी निर्भर थी द्वारकाधीश के ऊपर। अब द्वारकाधीश चले गए यहाँ पे तो उनका क्या होगा, इसलिए उन्होंने द्वारकाधीश से कहा नहीं अब हम कैसे जिएंगे वहाँ पे। उनका कोई बात नहीं, एक साल के बाद वहाँ पे सेवा आराधना भाव है, एक कुआं है, तो उस कुएं में जाना और एक साल के बाद और मेरा और एक विग्रह तुम्हें प्राप्त होगा जो बिल्कुल इस विग्रह मेरे जैसे ही है, कोई अंतर नहीं होगा, मैं प्राप्त हो जाऊंगा तुम्हें वहां पे। तो फिर वो चले गए, लेकिन बहुत बेचैन थे, धीरज नहीं रख पाए। अब एक साल कौन रुकता, छह महीने के बाद ही उस स्थान में जाकर तैयारी करने लगे। तो उनको विग्रह मिल गया, लेकिन क्योंकि इस समय के पहले उन्होंने किया था, इसलिए यह विग्रह है थोड़ा छोटा था। है वही द्वारकाधीश की मूर्ति, दिखने में बिल्कुल वैसे के वैसे, परंतु थोड़ी छोटी मूर्ति थी। तो मैं सोचा खैर ठीक है तो द्वारकाधीश जी उनको स्थापित किया वहां पर द्वारकाधीश मंदिर में और वहां सेवा चलता। तो इस तरह से भगवान की मूर्ति जो यहाँ है रणछोड़ राय के नाम से जो प्रसिद्ध है, तो वास्तव में द्वारकाधीश है, द्वारका से आए हैं। पहले द्वारका में हुआ करते थे और बोलाना भक्त के द्वारा वो यहाँ पर डाकोर में आ गए। तो जब पहले आए तो उनको दंतनाथदेव के पास रखा गया रणछोड़ राय जी को, और उसके बाद लक्ष्मी जी का मंदिर है यहाँ आपने देखा वो उनके पास रखा गया। तो वहाँ एक कोई बहुत धनी व्यक्ति थे, उन्होंने उनका मंदिर वहाँ बना दिया स्थान लक्ष्मी देवी के पास, और फिर बाद में यहाँ भी मंदिर बना सकते। अब जहाँ मंदिर है रणछोड़ राय जी का वो लगभग 240 साल पुराना है। इसके पीछे भी एक संक्षिप्त कहानी है, इतिहास है कि महाराष्ट्र के सातारा जिले से एक व्यक्ति थे जो शराब थे, जो पुणे के केशवाओं की सेवा करते थे और जो बड़ौदा के गायकवाड़ थे, दोनों इन दोनों परिवारों की वो सेवा करते थे। उनका धन आदि इतना वो भी अपने आप में बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे। तो वो बहुत धार्मिक भी थे, भगवान कृष्ण के भक्त थे। तो सातारा पुणे से होकर वो द्वारका जा रहे थे। द्वारका जाते जाते वो बड़ौदा के पास में आए। रात में द्वारकाधीश उनके सामने आए और वो कहने लगे कि आप यहाँ डाकोर जाना, वहाँ डाकोर जाके मेरा दर्शन करना। तो सपने से जागे, अपने साथियों को जगाया और तुरंत निकल पड़े बड़ौदा से। यहाँ डाकोर आए और दर्शन किए और देखा कि जैसे भगवान का रूप था सपने में, बिल्कुल वही का वही रूप यहाँ मंदिर में है। उस समय ये मंदिर नहीं था। वो बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कि मुझे यहाँ रणछोड़ राय जी के लिए एक मंदिर बनाना होगा, धन तो काफी था उनके पास। तो उन्होंने जमीन खरीद ली यहाँ भगवान के लिए। साथ साथ न केवल जमीन खरीदी परंतु जो मंदिर का निर्माण कार्य है उसके लिए भी सारे पैसे दे दिए और उनके पुण्य की वजह से वो मंदिर बना। उसका नाम था गोपाल राव जगन्नाथ जंपेकर। तो बड़े बड़े भक्त कृष्ण भक्त थे, और ऐसे की बदलती है कि अपने पिछले जन्म में वो दक्षिण भारत में रहा करते थे द्रविड़ देश, और वो बालाजी का दर्शन तिरुपति में करने जा तिरुमल में करने जा रहे थे। उन्होंने देखा कि बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत सारा धन दान में दे रहे हैं बालाजी को, लेकिन उनके पास कोई धन था नहीं देने के लिए दान में भगवान को। तो वो थोड़े बहुत निराश हो गए और 21 दिन लगातार वहाँ उन्होंने बालाजी की खूब सेवा की, खूब प्रार्थना की, व्रत का पालन किया। और उन्होंने प्रार्थना की भगवान से कि मुझे खूब धन दीजिए, मेरे लिए नहीं ताकि मैं आपको धन दे सकूं दान। तो किसी को धन मांगना भी है भगवान के लिए, नहीं मांगे तो अच्छा है, परंतु मांगना भी है तो केवल इसीलिए मांगना चाहिए कि हम भगवान की सेवा कर सकें। कोई कमीशन नहीं रखना, जो है वहाँ लोगों को पूरा देना है भगवान। एक बार हुआ ये था कि एक व्यक्ति बालाजी का दर्शन करने गए थे, वो कोई व्यापार करने जा रहे थे और कोई प्रस्ताव था उनके सामने व्यापार में, परंतु उनको संशय था कि क्या ये पूर्ण होगा या नहीं होगा। तो बालाजी को उन्होंने जाके कहा कि प्रभु देखिए, ये व्यापार का एक प्रस्ताव मेरे सामने है, अब यदि मुझे 10 लाख मिले, मैं तो आशा करता हूँ कि प्रश्न 10 लाख मिलेंगे, तो अब मैं आपको दे दूंगा, 5 लाख दे दूंगा आपको, तो इसलिए मैं आपकी सेवा करके आया हूँ। सकाम भक्त थे तो बालाजी ने कहा, बालाजी ने प्रार्थना सुन ली, तो फिर जब उसने वो चर्चा करने गया तो उसको मुनाफा केवल 5 लाख हुआ, 10 लाख के बजाय। तो आधा तो दे देना चाहिए था बालाजी को और 1.5 लाख देना चाहिए था, समझौता किया था। लेकिन वो फिर से जब बालाजी का दर्शन करने गया तो बालाजी ने कहा, अरे भाई क्या हुआ, मेरा जब हिस्सा था 5 लाख देना था ना, अभी तुम्हें 5 लाख मिला, 2.5 लाख तो कम से कम दे दो मुझे। उस व्यक्ति के ने कहा कि 50% जो आपका हिस्सा था पहले से ही आपने रख लिया, तो अभी आपको क्यों देना है। तो ये है सकाम भक्त। तो वैसे तो पहले भगवान के पास केवल भक्ति के लिए जाना चाहिए, भक्ति के अतिरिक्त और कोई मांगना तो कोई चीज नहीं मांगनी चाहिए। लेकिन धन मांगना भी है तो इधर उधर मांगने के बजाय भगवान के पास जाए, और भगवान के पास जाकर धन मांगे भी तो वो धन, उस धन का प्रयोग भोग के लिए नहीं करना चाहिए, भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल कर देना चाहिए। एक भक्त पूछ रहे थे कि हम सेवा का नाम नहीं बताएंगे, ऐसा ना हो कि कहीं सब लोग वहां सेवा करने चले जाए तो नौकरी वहां लेने के लिए, कि उनकी नौकरी कुछ ऐसी है कि तनख्वाह के अतिरिक्त उनको बहुत कुछ मिलता है। हम समझ गए, ऐसे कई नौकरियां हैं भारत में जिनको तनख्वाह के अतिरिक्त बहुत कुछ मिलता है, अच्छा खासा मिलता है। तो जब वो भक्त बने तो हमने उनको बताया कि भाई वो पहले दान दिया करते थे, फिर हम समझ गए कि इतनी बड़ी रकम उनको कहाँ से मिल रही है। तो हमने कहा कि भाई देखो यदि ऐसे है तो नहीं करना ही ठीक है, तुम्हारे पास अच्छी तनख्वाह मिल रही है और क्या चाहिए तुम्हें, ये सब कार दूसरों से घूस लेना, ये करना, ये सब धन क्यों कमाना है तुमको, तुम्हारा मन खुशिक हो जाएगा। और ऐसे जो धन कमाए हुआ होता है इससे अपनी चेतना खराब हो जाती है और हमारी भक्ति भी खराब हो जाएगी, तो इसीलिए हमें ऐसे नहीं चाहिए। और वैसे भी पकड़ भी जाओगे तो कितनी परेशानी होगी, सारे समाज में कितनी बेइज्जती हो जाएगी, कितना तनाव होगा, बहुत समस्या हो जाएगी, इसलिए नहीं करना। तो कहने लगे कि यदि क्या होता हम नहीं लेंगे और दूसरे लेते हैं, हम नहीं लेंगे तो हमें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, फिर वो हमें कोई समस्या में डालते हैं, अकेला है जो इसकी वजह से हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। तो कहा कि इतनी जबरदस्ती यदि हाथ में आ भी जाए कुछ, नहीं लेना सबसे अच्छा है, यदि हाथ में ऐसे कुछ आ भी जाए तो 99% नहीं 100% वो पैसा कृष्ण को दे देना, फिर अपने पास नहीं रखना कुछ, परंतु इस भावना से नहीं लेना कि मैं कृष्ण के लिए कुछ करना चाहता हूँ इसलिए मैं कुछ इधर उधर से घूस आदि लेकर पैसे कमाऊँ, ऐसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान हमारी चेतना चाहते हैं, केवल हमारा धन नहीं चाहते, भगवान भावग्राही जनार्दन है, रुपयाग्राही जनार्दन नहीं। हालांकि यदि हमारे पास रुपये हो तो उनकी सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे लेके रुपए भी हैं लेकिन हम केवल भाव देंगे भगवान को, भाव है तो रुपए भी देंगे, लेकिन रुपए नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं। तो खैर ऐसे ये बहुत वहां गए थे पूर्व जन्म में, तो उन्होंने भगवान से पूछा कि आप मुझे कुछ धन दीजिए ताकि मैं आपकी सेवा में इस्तेमाल कर सकूं, जैसे ये लोग दान दे रहे हैं मैं भी आपको दान दे सकूं। फिर भगवान स्वप्न में आए उनके और उनसे कहने लगे कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तुम्हारा तुम्हें एक मौका मिलेगा, जब तुम महाराष्ट्र में जन्म लोगे और तुम आगे चल के गुजरात प्रांत में अर्थात डाकोर में जाके तुम रेलवे मंदिर बनाओगे। क्योंकि उसने उस व्यक्ति ने पूछा था बालाजी से कि मैं आपके लिए बहुत बड़ा मंदिर बनाना चाहता हूँ, बहुत प्रसिद्ध होना चाहता हूँ। आपके लिए बड़ा मंदिर बना गया लेकिन इस जन्म में नहीं, अगले जन्म। तो अगले जन्म में उनको ये जन्म मिला और पेशवा और गायकवाड़ दोनों परिवारों राज परिवारों का संबंध तो था ही और उनके पास निजी धन भी काफ़ी था। तो उन्होंने यहाँ पे ज़मीन खरीद ली, निर्माण कार्य समाप्त कर लिया और अपनी कोठी भी बनाई पास में। और जो विद्वान ब्राह्मण थे, जो अर्चा पेड़ की सेवा करने वाले थे, ब्राह्मणों के लिए भी उन्होंने निवास स्थान की व्यवस्था करके दी, ज़मीन खरीदा, उनके लिए घर लगवा के दे दिया। अब आगे चल के ये गोपाल राव सोचने लगे कि मंदिर की आमदनी कैसे होगी, भगवान की सेवा चलती रहनी चाहिए और जो ब्राह्मण हैं उनका भी देख रेख भरण पोषण होना चाहिए, तो क्या करना चाहिए इसके लिए। तो फिर वो पेशवा के पास गए पुणे में और वहाँ के जो पेशवा थे उन्होंने कहा ठीक है, मेरे डाकोर गांव छोड़ के उनके नीचे आता था ये। तो यहाँ जो डाकोर गांव है मैं ये दान में देता हूँ, इनाम देता हूँ और आपको देता हूँ ताकि इससे जो भी आमदनी होगी वो रक्षा की सेवा के लिए और उनके सेवकों के भरण पोषण के लिए होगा। और फिर जो बड़ौदा में आके सारे जी राय गायकवाड़ से मिले, जो वहाँ के राजा थे गायकवाड़ वंश के महाराजा सारे जी राव, तो उन्होंने भी और एक गांव दे दिया पास का जो उनके राज में था। तो ये डाकोर संस्थान के नाम से जाने जाते हैं दो गांव। इनसे जो भी उत्पन्न है, उत्पन्न होता है या जो भी आमदनी होती है वो यहाँ डाकोर चौरा जी के सेवा के लिए इस्तेमाल। पहले जमाने में ऐसे किया लोग किया करते थे राजा कि मंदिर का निर्माण कर लिया, मंदिर के साथ साथ जमीन भी दे दी ताकि जमीन से जो खेती होगी, जो उत्पादन होगा उससे ब्राह्मणों का देख रेख होगा, सेवा होगी, भगवान की सेवा भी ठीक ठाक चलेगी। आजकल मंदिरों के देखभाल के लिए कोई ऐसे कोई व्यवस्था करना आवश्यक है? आजकल केवल जमीन खरीदने से हो या किसी दूसरे तरीके से हो ताकि मंदिर के जो खर्चे हैं वो चलते रहे। पहले तो राजा हुआ करते थे, राजा सब व्यवस्था करते थे, आजकल राजन को धर्मनिरपेक्षता के नाम पे ऐसा कुछ करते नहीं है, तो समय काफ़ी बदल गया है। परंतु खैर ऐसी व्यवस्था उस समय यहाँ पर हो गई थी, तो इसलिए 240 साल पहले से आज पता चलती आई है। आज यहाँ एक समिति है और समिति में इस इलाके के 3 वैष्णव होते हैं, जो श्रद्धालु भक्त होते हैं उनको चुना जाता है और एक गोपाल राव जी के कोई वंशज हैं उनके परिवार में से एक व्यक्ति चुने जाते हैं और जो ब्राह्मण सेवक हैं उनमें से एक को चुना जाता है। तो 5 लोगों की समिति के अंतर्गत ये चलाया जाता है। तो ये है डाकोर का रणछोड़ राय मंदिर। यहाँ पे डंकनाथ महादेव का मंदिर भी है, जैसे हमने पहले बताया लक्ष्मी देवी का मंदिर भी है। और जिस धाम में वो नीम का पेड़ है वहाँ बिलेश्वर महादेव है, हनुमान जी का मंदिर भी यहाँ पे है। तो ऐसे कई स्थान हैं, पहले के हिसाब से डाकोर अब काफ़ी बढ़ गया है। परंतु रणछोड़ राय जी बहुत प्रसिद्ध हैं, देश विदेश से लोग यहाँ उनका दर्शन करने आते हैं और उत्सव बड़े बड़े मनाए जाते हैं यहाँ पे, कार्तिक पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा इत्यादि। लाखों की संख्या में उन दिनों पर खास करके यहाँ लोग आते हैं, यात्रीगण आते हैं। तो हमारा बहुत सौभाग्य है कि आज हम यहाँ डाकोर में आ पाए हैं, रणछोड़ राय जी का दर्शन हमने कर लिया है, आज शाम को हम फिर से दर्शन करेंगे। और उस दर्शन करने के बाद यहाँ आके रणछोड़ राय की कथा सुनेंगे कि भगवान का रणछोड़ राय नाम क्यों बना। रणछोड़ राय भगवान की
जय।
श्री डाकोर धाम की
जय।
मंदिर का कौन से हरे कृष्ण। धन्यवाद।